जो उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। 10,000 यूक्रेनियंस आगे हैं, लेकिन 54,000 और यूक्रेनियंस जो हैं उनको अप्रूव किया गया है इस बेसिस पे कि वो आके यहाँ पे 3 साल रहेंगे जब तक कि उनके मुल्क के हालात ठीक नहीं हो जाते। लेकिन जाहिर है जो आएंगे फिर वो कहाँ वापस जाएंगे माजिद भाई। तो वो कह रहे हैं जी कि हम अब इनके ऊपर काम कर रहे हैं एंड वी हैव स्टार्टेड कैश एंड एरो प्लान जो प्रोग्राम्स हैं वो हमने शुरू किए हैं ताकि उनके टिकट्स उनको दिए जा सके और उनको इधर लाया जा सके। और डेफिनेटली जो है उन्होंने जो है हम जैसे मेरे आप जैसे जो है वो टैक्स पेयर्स उनसे पैसा मांगना है तो उन्होंने कहा है जी कि अगर कोई डोनेशंस देना चाहता है तो जरूर दे। हैं जी, हाँ जी, आपसे हम खींच के उनको देंगे लेकिन आपको कुछ नहीं देंगे। ठीक है जी, तो ये अब जी इधर काम एक और होने लगा। फेडरल गवर्नमेंट जो है जी उसने आज एक नया रूल जो है वो अनाउंस किया है और उन्होंने कहा जी वैसे तो ज्यादातर प्रोविंसेस और टेरिटरीज में ये हमने सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है रिलैक्स कर ही दी हैं और मास्क जो है आपने नहीं पहनना है, लेकिन अब हम कह रहे हैं क्योंकि ये केसेस हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो जो कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कनाडा के अंदर ट्रैवलर आ रहा है कनाडा में वो एटलीस्ट यहां पे आने के बाद 2 वीक्स तक मास्क पहने, प्रॉपरली जो वेल कंस्ट्रक्टेड मास्क है वो जरूर पहने और उसके बाद जहां जहां वो जा रहा है उसका भी ट्रैक रखे। तो उसके लिए जी उन्होंने आज ये नए रूल्स दिए हैं और उन्होंने कहा जी कि इन रूल्स को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको बता रहे हैं कुछ दिनों से कि कुछ कंट्रीज जो हैं जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड वगैरह वो चाहते हैं कि जी वो अब नेटो का हिस्सा बने, हालांकि वो पहले नहीं थे क्योंकि उन्होंने हमेशा ये सोचा कि हमको नेटो का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, वी आर फाइन, हमको बड़ी आर्मीज की जरूरत नहीं है, हमको इतना डिफेंस में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। परसों हमने आपको बताया था कि जी वो जो स्वीडन है वो सोच रहा है, आज फिनलैंड जो है इसके बारे में सोच रहा है। फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन, ये देखें मजीद भाई बड़ी हसीन खातून है, इन्होंने आज कहा है जी कि हमने मीटिंग्स आज से शुरू की हैं, आज मींस वेंसडे से, और हम देखना चाह रहे हैं कि हम नेटो की मेंबरशिप किस तरह से लेके ले सकते हैं। आज इन्होंने एक वाइट पेपर जो है वो किया है, पब्लिश किया है, और जो इनके पॉलिटिशियंस हैं फिनलैंड में वो आज इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे नेटो की मेंबरशिप के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
जी
हाँ जी, तो यूनाइटेड नेशन HCR जो है यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, आज उन्होंने बड़ी ही डायर किस्म की जो है एक पिक्चर पेश की है और उन्होंने कहा कि जब से यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है रशिया की तरफ से उस वक्त से 5 मिलियन यूक्रेनियंस जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं। तो अब यूनाइटेड नेशंस जो है वो कह रहा है कि भाई इनके लिए जो है इनकी चूंकि ये अपने दे हैव फ्लीड देयर कंट्री तो इनके बेडिंग के लिए, खाने के लिए, इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो अभी तक उन्होंने कोई अमाउंट बताई नहीं है कि कितना इनको जनरेट यूक्रेनियंस के लिए करने की जरूरत है, लेकिन ये उन्होंने कहा है जी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ी जो है ऐसे माइग्रेशन है लोगों की और उसके लिए हमें काफी फंड्स और चीजें चाहिए। तो अब फिगर अगर कल तक आएगी तो फिर हम बताएंगे कि यूनाइटेड नेशंस जो है कितना यूरोपियन यूनियन को या बाकी दुनिया को फंड्स जो है वो जमा करने के लिए इनको कह रही है। रॉयटर्स की एक न्यूज है और ये वो खतरनाक न्यूज है जिसकी तरफ मैं आपका जो है वो तवज्जो दिलाना चाहती थी। ये जो हर रोज कोई ना कोई यूरोपियन कंट्री कह रहा है, अमरीका भी, आज कैनेडा ने भी कह दिया हम आर्म्स भेजेंगे, यूक्रेन को आर्म्स भेजेंगे, आज जो है रशिया ने टेस्ट किया है जी सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल मिसल, यानी ये नहीं है कि ये सरफेस टू सरफेस है, ये एक कॉन्टिनेंट से क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकता है ये। तो ये जो है इसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स जा सकते हैं और पुतिन साहब ने कहा है कि इसकी जो टेक्निकल प्रोएस है वो इतनी ज्यादा है कि इस तरह का वेपन अभी तक दुनिया में इंक्लूडिंग चाइना, दुनिया में, अमरीका में, नासा वाले जो है, किसी ने ये इस तरह का वेपन आज तक नहीं बनाया। तो ये उसका बड़ा सक्सेसफुल इन्होंने आज तजर्बे किए हैं और इन्होंने कहा है जी कि ये जो है हर इसके अंदर जो मिसल है इस सिस्टम के अंदर वो 10 के करीब तकरीबन जो है वॉर हेड एक जो मिसल है वो 10 वॉर हेड्स लेके जा सकता है और इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में किसी के पास नहीं है, इट्स ओनली अस हु हैव दैट। तो अगर आप सोचें कि अगर इन्होंने फिर अब ये दिए तो फिर न्यूक्लियर वॉर की तरफ कदम है ना,
सही,
कि अगर आपने उनको वेपन्स भेजे तो फिर अगर हमने ये तजर्बा किया तो इसका मतलब है कि हम फिर पीछे नहीं रहेंगे, हम फिर ये यूज करेंगे। जैसे अब कनाडा कह रहे हैं हम हैवी मशीनरी भेज रहे हैं, अमेरिका भी भेज रहा है, नेटो वाले बाकी भी भेज रहे हैं, तो फिर इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये सिर्फ जो है न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करें, तो विच इज वेरी वेरी डेंजरस। ये आज जो खबर आई है जिस वक्त, उस वक्त से दुनिया काफी हिली हुई है ये, क्योंकि ये सिर्फ रॉयटर्स ने अभी तक जो है ब्रेक की है, उनकी ब्रेकिंग न्यूज थी आज की ये जो है। अच्छा जनाब, आज बहुत ही अरसे के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टन साहब, उन्होंने अपने जो चाइनीज काउंटर पार्ट है उनसे आज बात की है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी हम आपसे बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प चाहते हैं। और इन्होंने ये जो हैं जनरल वाई फेंगे, इनके जो काउंटर पार्ट हैं चाइनीज, उनको कहा है कि रशिया के अंदर आप कोई भी मिलिट्री सपोर्ट उनको ना दें। इसका आज जो जिक्र है इस मीटिंग का, ये जो है स्पोक्स पर्सन इनके जॉन किर्बी पेंटागन के, उन्होंने आज कहा है और उन्होंने कहा जी कि ये दोनों साइड्स जो हैं इस पे उन्होंने कहा है कि ये जो कॉस्ट है वॉर की बहुत ऊपर जा सकती है। इसमें उन्होंने कहा जी कि बाइडन साहब ने जिस वक्त मार्च में शी साहब से, यानी ये स्टेटमेंट देखें जॉन किर्बी की, मुझे इतनी हंसी आई कि जिस वक्त मार्च में प्रेजिडेंट शी के साथ बात की थी बाइडन साहब ने, तो चाइना को बड़ी वार्निंग दी थी कि खबरदार तुमने जो है रशिया को ज्यादा वेपन्स और चीजें दी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा शी साहब सुन रहे हैं, शी साहब ने उधर से मिसाइल इनको मारना है, इनकी तबीयत हो जानी साहब के जी। बाइडन साहब ने बड़ा वार्न किया शी साहब को, एज ए शी साहब बैठे हुए थे आपकी वार्निंग सुनने के लिए, भाई क्या बातें आप कर रहे हो। अच्छा खैर, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए, इन्होंने भी वोट्स चाहिए ना इनको भी, तो वो है। तो उन्होंने कहा जी हमने इनको कहा था कि आप ना करें। तो अब आज की जो इन्होंने बात की है तो उसमें जॉन किर्बी साहब कहते हैं इन्होंने यही बातें एक्सचेंज की हैं फिर से, एंड दिस कॉल जो ये जो स्टीव ऑस्टन साहब की थी ये फॉलो अप कॉल थी मार्च की जो हुई थी इन लीडर्स के बीच में, और उसमें हम कह रहे हैं कि ये जंग में और तेजी आ जाएगी। अच्छा, जंग में और तेजी आ जाएगी, आप रशिया को तो ना दें लेकिन हम यूक्रेन को वेपन्स देते रहेंगे, हैं आप नहीं देना रशिया को, हम देंगे सिर्फ। तो भाई पैन है तो फिर ना खेडन वाली गल हुई है ना तो ये आप ना करें। अच्छा जी बार एनीवेज, अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर तो दिन ब दिन हालात जो हैं वो जरा खराब ही होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये पिछले कुछ दिनों से काफी सारी जगहों पे लड़ाई झगड़े मार कुटाई शुरू वहां पे हुई हुई है, राइट्स हो रहे हैं वहां पे, हेट स्पीचेस दी जा रही हैं मुसलमानों के खिलाफ स्पेसिफिकली। अब जो है ये बहुत ही दिल्ली का एक जो नेबरहुड है उसके अंदर जनाब वहां पे बुलडोजर्स आए और उन्होंने यहां पे मुसलमानों की जो शॉप्स थीं और कुछ और जगह थीं वो इनको गिरानी शुरू की हैं। और ये है जहांगीरपुरी का एरिया जो कि हम आपको कुछ दिनों से बता रहे हैं। तो ये जब काफी दुकानें और काफी घर वर कुछ जो हैं गिर गए तो उस वक्त जी फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उन्होंने कहा जी इसको फौरन रोक दें। लोगों का यहां पे ये हाल था, मीडिया जो है इंडिपेंडेंट मीडिया वहां पे जो दो चार अब इंडिया में रह गए हैं उनका कहना है कि लोग बेचारे अपने घरों में दुबक के बैठे हुए थे जब ये लोग अपने बुलडोजर्स लेकर आए हैं अथॉरिटीज जो हैं दिल्ली की, और देख रहे थे कि कैसे उनकी दुकानें जो हैं उनको मलिया मेट किया जा रहा है जिसके अंदर हजारों लाखों रुपए का सामान पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चीजें हैं, और उसकी लपेट में जो जो कोई गाड़ियां भी वहां पे खड़ी हुई थी, गाड़ियां भी आई तो उनको भी तोड़ दिया गया। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का इधर ऑर्डर आया कि भाई आपने जो है ये रोकें इसको फौरन, क्योंकि अभी तो ये हियरिंग चल रही है इसकी कोर्ट में, ये तो किस्सा जो ये जो राइट्स हुए थे ये जहांगीरपुरी में, तो ये तो अभी कोर्ट में इसका फैसला आया ही नहीं है, तो आपने कैसे ये ला के जो है ये बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए और ये चीजें आप गिरा रहे हैं। पर लोग जो वहां पे थे उन्होंने कहा जी कि यहां पे बेतहाशा नुकसान हमारा हुआ है, वहां पे जो कुछ लोग थे जिनसे मीडिया में देख रही थी बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि भाई हम कौन है, हम कोई टेररिस्ट हैं, हम किधर जाएं, हम मर जाएं, हम इंडियन नहीं है, हमारे साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है जस्ट बिकॉज वी आर मुस्लिम्स। तो बाकी जो बेचारे शॉपकीपर थे वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि ये इतनी मुश्किलों से मैंने एक दुकान ये छोटी सी डाली थी, पता नहीं वो क्या कह रहा था 10x6 या किसकी कुछ छोटी सी एक दुकान को ली थी और इसको भी अब इन्होंने कर दिया, अब मैं कहां से ये कर्जा लाऊंगा, कहां से फिर ये चीजें इसमें डालूंगा और कैसे मैं अपना घर चलाऊंगा। तो काफी वहां पे जो है वो रिएक्शन आया हुआ था। एनडीटीवी की आज एक रिपोर्ट थी और एनडीटीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया साहब, उन्होंने इस चीज का बड़ा नोटिस लिया और उन्होंने बड़ी खफकी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी दिल्ली में जहांगीरपुरी में किया गया है, लोगों के घर और दुकानें और मकान उनके गिराए गए हैं, तो अब करना तो ये चाहिए कि हमारे ये जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, इनका और बीजेपी के जो दूसरे लीडर्स हैं इनके घर गिराए जाएं। जब तक ये बीजेपी की गवर्नमेंट यहां पे रहेगी इस मुल्क में, उस वक्त तक ये कॉमनल वायलेंस और ये राइट्स जो हैं यहां पे चलते रहेंगे, जब तक इनके घर नहीं गिरेंगे इनको जो है समझ नहीं आएगी। उन्होंने कहा जी कि घर उनके गिराने चाहिए थे जो कि पिछले 15 साल से बीजेपी के ऑफिशियल्स जो ब्राइब्स ले रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया साहब कह रहे हैं। मनोज सिसोदिया साहब के मुताबिक पिछले 15 साल से बीजेपी के कुछ लीडर्स मुस्तकिल तौर पे जो हैं ब्राइब्स ले रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि ये बीजेपी एनआरकी मुल्क में पैदा कर रही है और इन्होंने घर गिराने थे वो जो ब्राइब्स लेते हैं उनके उसके बजाय इन्होंने गरीब लोगों का किया है, तो इनको हटाने की बड़ी जरूरत है। तो जब तक ये रहेंगे इस मुल्क के अंदर इसी तरह जो है एनआरकी जो है वो फैलती रहेगी। अब ये बड़े उन्होंने सख्त बयान दिए और बड़े गुस्से में थे वो। अब अमित शाह साहब का अभी तक बयान नहीं आया, अगर वो आएगा तो फिर वो हम आपको कल सुनाएंगे। पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं क्रिश्चियन टर्नर साहब, उन्होंने जी आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ आज मुलाकातें की हैं और उनको कहा जी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है आपके साथ बड़े प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात रखना चाहती है और आपके साथ बढ़ाना चाहती है और अपने जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो है उन्होंने इनको गुड विशेस का जो है वो भी मैसेज दिया। आज आपको पता है कि कैबिनेट की जो है वो हो रही थी ओथ सेरेमनी हो रही थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी, लेकिन इसके अंदर बड़ी हैरत की बात थी कि दो मेन एलाइड पार्टीज जो थी जो इनके एलाइज थे पीडीएम के, वो दो पार्टीज आज ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं थी। हालांकि सोर्सेज के मुताबिक यानी कि सूत्रों के अनुसार उनको मिनिस्ट्रीज भी ऑफर की गई थी। अच्छा, उसमें एक जो पार्टी है वो है एएनपी की, उसमें असवंद यार वली वगैरह की जो पार्टी है एएनपी, वो नहीं थे। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप लोग क्यों नहीं आए, आपको तो कोई मिनिस्ट्री भी दी गई है। उन्होंने कहा जी हम मिनिस्ट्रीज के लिए काम नहीं करते हैं, हम हमारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, हम लोगों के लिए काम करते हैं। अच्छा, अब ये नहीं पता चला है कि असवंद यार वली साहब की क्या डिमांड्स थी। इसी तरह इनके जो दूसरे एलाए हैं जो अख्तर सरदार अख्तर मेंगल साहब बीएनपी के जो चीफ हैं बीएनपी मेंगल के, वो भी आज ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं आए। तो मेंगल साहब से जब पूछा गया कि मेंगल साहब आप क्यों नहीं इसमें आए हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी में, तो मेंगल साहब ने कहा जी कि हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमारी डिमांड ये थी कि चागी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था जहां पर वो प्रोटेस्ट हुए थे और लोगों को मारा गया था, उसके ऊपर आपको एक प्रोब बिठाने की जरूरत है और चूंकि अभी तक उसके ऊपर प्रोब नहीं बिठाई गई है इसलिए एज अ प्रोटेस्ट जो है हमारी पार्टी भी जो है इसमें से। तो यानी अर्ली जो साइंस ऑफ तोड़फोड़ हैं पीडीएम के वो आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। वो जो थी एमक्यूएमपी वो नाराज होकर कराची में बैठी है, ये एक बलूचिस्तान की पार्टी, एक पिशावर की पार्टी, केपी की, ये सारे अब जो हैं ये अब अलग अलग जो हैं होने शुरू हो गए हैं। अच्छा जनाब, आज अभी अरफाबाजी जैसे आपको बता रही थी कि इल्हाम उमर साहिबा जो हैं वो आई हुई थी पाकिस्तान, तो उन्होंने मुलाकातें की हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ और उन्होंने बताया है शहबाज शरीफ साहब को कि हम हमेशा आवाज उठाते हैं मुसलमानों के खिलाफ जो भी कुछ होता है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो बाकी हो रहा है। ये बड़ी वोकल है, कांग्रेस वोमन है, ये काफी इन चीजों के बारे में उधर अमरीका में बात करती हैं और जो अपने कांग्रेस मैन है उनसे क्वेश्चन भी ये रेज करती हैं, उनसे भी पूछती हैं कि वहां पर जो इतनी जो सख्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में चल रही हैं उनके ऊपर आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक मुलाकात तो ये थी, दूसरी मुलाकात आज इन्होंने की है इमरान खान साहब से उनके रेजिडेंस पे बनी गाला इस्लामाबाद में। अच्छा, वहां पे जब ये गई तो वहां पे जो है पीटीआई के दूसरे भी ऑफिशियल्स जो थे वो मौजूद थे, वहां पे इन्होंने बड़ी तारीफ की इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा आप जो अभी यूनाइटेड नेशंस में आपने ये जो पास कराई है रेजोल्यूशन इस्लामोफोबिया पे, हमें बड़ी उसकी खुशी है और उन्होंने बड़ी एडमायर की इनकी करेज की। तो उसके जवाब में फिर इमरान खान साहब ने भी इनकी जो करेज है उसकी बड़ी जो है फिर तारीफ की। आज ये जो सारी डिटेल हैं इस मुलाकात की ये शीरी मिजारी साहिबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली हुई थी, लेकिन इसके ऊपर अब और बहुत सारे क्वेश्चंस पाकिस्तान में खड़े हो गए हैं। वो अब पूछ रहे हैं इमरान खान साहब से कि आपने कहा था फॉरेन इंटरफेरेंस थी और बहुत सारे लोग जो थे फॉरेन ऑफिशियल्स वो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के होते हुए ये पीएमएलएन और दूसरी पार्टी से मिल रहे थे, अब सिटिंग गवर्नमेंट पीएमएलएन की है तो फिर अब ये फॉरेन जो है डेलीगेट्स आके आपसे क्यों मिल रहे हैं, अब इसका जवाब क्या है? तो अभी तक इसका जवाब नहीं आया, जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। पीपीपी के जो चेयरमैन है बीबी जरदारी साहब वो अब लंदन चले गए हैं और उनके बारे में ये बात सामने आ रही है कि वो वहां पे नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे बहुत दिनों से सवाल थे कि क्या ये इनको जो फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान की ऑफर की गई है ये उस फॉरेन मिनिस्ट्री को कबूल करेंगे कि नहीं। तो उन्होंने पहले एक दफा कहा था इनकी पार्टी ने कि एक पार्टी का हेड दूसरी पार्टी के हेड के अंडर काम नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है सूत्रों के अनुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, کچھ اور چیزیں ہیں جو یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آج یہ نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے کیونکہ ناراضگی بھی تھوڑی سی ہے اے این پی کی, بی این پی کی, اور محسن داوڑ گروپ جو ہے اس کی بھی, تو اب ان کی ناراضگی کیا ہے یہ پتہ چلے گا. تو ان کے ساتھ اگر وہ معاملات طے ہو گئے تو پھر شاید یہ فورن منسٹری جو ہے وہ لے سکتے ہیں. کیسے لے سکتے ہیں اس کا بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس کے علاوہ جی, پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے آج بڑا جی, ہی ایکچولی ہیز براٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ, اور انہوں نے کہا جی عید الفطر کے بعد جو ہیں نواز شریف صاحب پاکستان آ سکتے ہیں. وہ ٹھیک ہو گیا, ان کا علاج مکمل ہو گیا. ہاں جی ہاں جی, تو وہ آ سکتے ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ وہ, اور کوئی وہ رعایت نہیں مانگ رہے اکارڈنگ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن, ان کے خلاف جو ورڈکٹس ہیں یا کہ جو بھی کوئی ہے اس کو وہ فیس کریں گے. تو بھائی صاحب ورڈکٹ تو سپریم کورٹ نے آلریڈی دے دیا کہ جیسے یہ لینڈ کریں گے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے, تو ورڈکٹ تو یہ ہے. تو انہوں نے کہا جی بہرحال کہ وہ بالکل جو ہے سپریم کورٹ کے اور لاہور ہائی کورٹ کے جو بھی کوئی ہیں اس کے مطابق جو ہیں وہ چلیں گے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے بیماری کا, ان کے اوپر جب کیس چل رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہیں نومبر 2019 میں, اور اس کے بعد ان کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ جائیں کچھ دنوں کے لیے اور واپس آئیں آن دا پرسنل بانڈ جو کہ بھرا تھا ان کے اپنے بھائی نے شہباز شریف صاحب نے, لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ شاید آ سکتے ہیں. یہ جو خطرے کی جو بات ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے پی ڈی ایم میں, اور بلاول بھٹو صاحب کیسے فورن منسٹر بن سکتے ہیں, اس کا ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں بڑے اس کے ساتھ کہ آج دا وائر کا ایک انٹرویو آیا ہے کرن تھاپر صاحب, جو ان کے سینئر جو جرنلسٹ ہیں کرن تھاپر صاحب, انہوں نے آج ایک انٹرویو لیا ہے حامد میر صاحب سے.
اچھا,
ہاں حامد میر صاحب سے انہوں نے آج انٹرویو لیا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں پوچھی ہیں. اکارڈنگ ٹو حامد میر, آج کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی میں بی این پی کا اور اے این پی کا نہ بیٹھنا is the first sign of cracks in PDM, according to حامد میر صاحب in this interview, وائر کا انٹرویو یہ جنہوں نے کرن تھاپر کو دیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے بڑا اوپنلی کہہ دیا آج اس انٹرویو میں, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے, حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو ان دا نیکسٹ 14 to 20 days پاکستان کے فورن منسٹر بن جائیں گے.
اچھا,
ہاں تو یہ بڑی ریولیشنز کی ہیں انہوں نے اس انٹرویو کے اندر, اور بھی بے شمار انہوں نے باتیں کی ہیں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی جو ہے وہ, کیا اس کے اندر پرابلمز تھے, کیا تھا یہ وہ, کافی انہوں نے بات کی. کوئی اتنا لمبا نہیں تھا, اکثر تو جو ہیں کرن تھاپر صاحب 40-40 منٹ کے انٹرویوز لیتے ہیں, یہ کوئی تقریباً 16.5 منٹ کا انٹرویو ہے, لیکن اس کے اندر بہت سارے ریولیشنز کیے ہیں حامد میر صاحب نے. تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی, جو پہلا کام اب شروع ہو گیا جیسے ہی اب گورنمنٹ آئی ہے, آپ کو پتا ہی ہے نا گورنمنٹ عمران خان صاحب کے زمانے میں, ہم کوئی عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, لیکن ان کے زمانے میں جو پی ایم ہاؤس میں جو وہ ہوتی تھیں, وہ جو پریسرز ہوتے تھے, اس میں صرف ایک چائے کا کپ آفر کیا جاتا تھا, اور وہ بھی کسی کو ملتا تھا, بےچارے جرنلسٹ کو کسی کو نہیں ملتا تھا. شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ جس دن آئے ہیں پہلے دن انہوں نے یہی کام کیا, حکم دیا جی کل اشائیہ ہوگا, جس میں کہ کوئی کہتے ہیں 80-85 لاکھ روپیز لگ گئے ہیں, بہت سارے جرنلسٹوں کو بلایا تھا. اچھا جی, اب دوسرا کام جو شروع ہو گیا ہے کہ جو بھی ای ایس ایل کے اوپر ہے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ہے, ان کو ہٹایا جا رہا ہے. آج پہلا جو ہے وہ اس کی منظوری فیڈرل کیبنٹ نے دے دی ہے, اینڈ دس از فار مفتا اسماعیل صاحب, ان کے بارے میں کہا ہے جی کہ ان کو فوراً جو ہے ہٹایا جائے ای ایس ایل سے, اور کیونکہ انہوں نے جانا ہے واشنگٹن, کیونکہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر رضا باقر صاحب ہیں وہ پہنچ چکے ہیں, اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہ فائنانس منسٹر ہیں, ان کا ادھر ہونا ضروری ہے, کیونکہ آئی ایم ایف نے جب یہ چینج ہوئی تھی ساری گورنمنٹ جو تھی, تو $6 بلین کا جو بیل آؤٹ پروگرام دینا تھا وہ روک لیا تھا. تو اب یہ جا کے پھر سے پیسے مانگیں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں 6 بلین تو کم ہے, ذرا 12 بلین دو, کیونکہ 6 بلین ہم نے جو ہے ادھر ادھر بانٹنا بھی ہے نا, ونڈیاں سی کافی پائیاں تھے اور بھی تھے, بہرحال جی ان کا ادھر جانا بہت ضروری ہے. تو یہ ادھر اب جائیں گے تو کہیں گے پائن ساڑھے بھائی نہیں ہو دو نا اور پیسے, یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ایسے. اچھا جناب, آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی انٹرسٹنگ باتیں چلی ہیں, اور باتیں یہ چلی ہیں کہ پی 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 کے لائر تھے فاروق نائک صاحب, اور وہ بات کر رہے تھے جسٹس جمال خان مندو کھیل کے ساتھ, جس میں کہ انہوں نے کہا ہے, فاروق نائک صاحب نے کہا ہے کہ یہ جتنے لوگ ڈیفیکشن جنہوں نے کی پارٹیز سے, تو یہ جو ہے ان کو آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہیے, ہم کو ان کو رہنے دینا چاہیے تاکہ یہ اپنی ٹرم پوری کر لیں, یعنی کہ جو باقی کے 1.5 سال رہ گئے ہیں وہ پوری کر لیں. اچھا, تو اس کے اوپر جسٹس مندو کیل نے کہا کہ اچھا, اگر آپ کی انٹرپریٹیشن آرٹیکل 63 کی یہ ہے کہ جس نے ڈیفلیکشن کی ہے وہ بھی ابھی پوری اپنی ٹرم کرے گا, تو پھر کیا یہ کرائم نہیں ہے کہ آپ نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹایا ہے؟ उसको अपनी टर्म क्यों नहीं पूरी करने दी, और ये क्या क्राइम नहीं है कि ये जिन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग की, डिफ्रेक्शन किया, उनके वोट को फिर आपने कैसे काउंट किया, फिर उसको भी काउंट आपको नहीं करने चाहिए था, तो उसको भी क्राइम मानना चाहिए था, राइट? क्योंकि आपने कहा है कि जी ये क्राइम है और ये जो है इनको बस अपनी टर्म पूरी कर लें, तो ऐसा लॉ होना चाहिए कि उसके बाद फिर ये फाइट ना कर सके। अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये भी क्राइम है कि आपने सिटिंग गवर्नमेंट को भी पूरा करने देना था अपना टर्म, उसको क्यों हटाया, और जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया उनसे आपने वोट क्यों लिए, फिर वो भी नहीं करने चाहिए थे, तो वो भी क्राइम है। तो ये आज जी वहां पे काफी वहां पे बहस चलती रही फारूक नायक साहब और जस्टिस मंदोखेल के बीच में। पाकिस्तान के दादू के एरिया में आज बड़ी अफसोस की खबर है, वहां पे एक किचन के अंदर आग लगी थी, लेकिन चूंकि बेचारे ये जो सारे घर होते हैं ये सारे वो उसके होते हैं, घास फूस के होते हैं और लकड़ी के होते हैं, और इस तरह तो वो काफी आग फैल गई, उसमें 8 बच्चों की जान चली गई है, एक औरत की डेथ हो गई और 50 होम्स जो हैं वो बिल्कुल बुरे तरीके से जो हैं वो इधर खत्म हो गए हैं। और सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस लेते हुए उनको कहा है कि फौरन इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट्स दें। लोगों का यहां पे इलाके के लोगों का जो मीडिया इनके पास पहुंचा हुआ था उनको इन्होंने कहा जी कि हम इनको फोन करते रहे हैं कि फायर ब्रिगेड भेजो, इन्होंने नहीं भेजी, जिससे आग भड़क गई और इतनी फैल गई और इतना नुकसान हुआ, और ना ही कोई यहां पे इलेक्टेड ऑफिशियल हमारे पास आया और उसने कोई अफसोस किया। बहरहाल जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसकी इंक्वायरी करें और आप दें, और जैसी हमारे मुल्क में इंक्वायरी रिपोर्टें बनती हैं वो जी है वो बनेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसके अलावा जी आज बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है, खासतौर पे जो जस्टिस जो औरंगजेब हैं उन्होंने कहा है जी कि ये लॉ बिल्कुल स्टूपिड लॉ है इस कंट्री का, कि तोशा खाना के अंदर जो फॉरेन ये जो गिफ्ट्स आते हैं वो ना डाले जाएं सारे के सारे, और आप एक सर्टन रकम दे देते हैं और आप कहते हैं जी ये तोहफा मैं अपने घर लेके जा रहा हूं। ये सारे तोहफे जो कि बाहर से आते हैं, जैसे कि यानी कि उन्होंने तो एग्जांपल नहीं दी लेकिन हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको जितने भी बाहर से तोहफे मिलते हैं वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट पे होते हैं उनकी प्राइसेस के साथ, तो वो कहते हैं जी कि ये इमीडिएटली जितने भी गिफ्ट्स आज तक किसी को दिए गए हैं किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को, फौरन उसकी लिस्टें जो हैं वो जारी की जाएं और वो सारे गिफ्ट्स उनसे वापस लिए जाएं। तो मैं सोच रही थी कि जरदारी साहब ने तो बड़े लंबे गिफ्ट लिए थे, इंक्लूडिंग लेक्सस गाड़ी और ये और वो, तो वो वापस करें। बहरहाल जी इन्होंने आज जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है उन्होंने आज मैं हुक्म दिया, उन्होंने कहा जी वैसे तो हम हुक्म देते रहते हैं लेकिन कैबिनेट हमारा हुक्म मानती तो नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये सारा कुछ वापस लाएं। अच्छा जी निकोलस केज साहब आपको पता है बड़ी जबरदस्त फिल्मों में काम करते हैं, उन्होंने आज बड़ी रेवलेशंस की हैं। वो आज बैठे हुए थे यहाँ पे पीपल्स मैगजीन को एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जी हमें पता चला है कि आपको तो बड़ी जबरदस्त फिल्में ऑफर हुई थी, द मैट्रिक्स एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो आपने इनको क्यों ना बोला। तो उसने कहा जी कि मैं, निकोलस केज ने कहा कि मैं मुल्क से 3-3 साल बाहर नहीं रह सकता शूटिंग के लिए, मेरे लिए फैमिली फर्स्ट है, और उस वक्त जिस वक्त ये मुझे सारी ऑफर्स आ रही थी तो मेरा जो बच्चा था वेस्टर्न, मेरा सन वेस्टर्न जो था उसको मेरी जरूरत थी, तो मैं अपने बच्चों को छोड़ के फिल्मों की शूटिंग्स के लिए जो है वो नहीं जा सकता हूं, तो मैं, दिस इज नॉट व्हाट निकोलस केज इज, तो जो आप फिल्मों में देखते हैं दैट इज अ डिफरेंट निकोलस केज, बट मैं जो आपके सामने बैठा हूं दैट इज अ फैमिली मैन, मेरे लिए फैमिली जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जनाब तापसी पन्नू को 10 साल हो गए हैं बॉलीवुड के अंदर, और आज वो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, आज का मतलब ये नहीं कि आज के दिन उनको 10 साल हो गए हैं, अब तक यानी उनको 10 साल हो गए हैं बॉलीवुड में, लेकिन आज उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि 10 साल की सख्त मेहनत के बाद फाइनली शी विल बी वर्किंग विद एन अपकमिंग फिल्म, इन एन अपकमिंग फिल्म विद शाहरुख खान, and this film is being produced by none other than ye jo hain इनके जबरदस्त किस्म के ये जो डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी उनके साथ। तो वो कहते हैं जी कि ये किसी एक्टर ने कभी कहा था, जाहिर है कि वो शाहरुख खान का ही इशारा कर रही थी, कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसको मिलाने में लग जाती है, तो कहते हैं कभी किसी ने ये कहा था, यानी जाहिर है शाहरुख खान का ये एक फिल्म का डायलॉग है, तो वो कहते हैं वो बिल्कुल सच हो गया है, और आप हार्डवर्क करते रहें, क्योंकि मैं तो वैसे भी नॉन फिल्म बैकग्राउंड से थी तो मुझे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा, बट आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। मंडे के दिन जनाब एक बड़ी खबर आई थी अफसोस की, रोनाल्डो जो हैं उनके घर में ट्विंस हुए थे, उनके उस ट्विंस में से बच्ची बच गई थी और उनका जो बच्चा है बेटा जो था वो उसकी डेथ हो गई थी, तो आज जो है सारी दुनिया से इनको जो है वो मैसेजेस आए इनको और इनकी पार्टनर जो हैं जॉर्जिना रॉड्रिगस के लिए, और उन्होंने कहा जी वी आर स्टैंडिंग बाय यू। आपको पता ही है कि कल लिवरपूल के साथ गेम थी बड़ी जबरदस्त, लेकिन वो भी इन्होंने कल मिस की है बिकॉज ही इज स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली, और उन्होंने कहा जी कि एट दिस टाइम वी नीड प्राइवेसी। और मजिद भाई आपके नीले जे, आप कह रहे थे दिस इज द ईयर फॉर नीले जे, नीले जे 2-1 से हार गए हैं बोस्टन रेड सॉक्स। अच्छा ये बिगनिंग है,
दो गेम और बाकी हैं, अप्रैल को भूल जाए आप, हॉकी के एंड बास्केटबॉल के प्ले ऑफ्स हो रहे होते हैं, हाँ, तो इसके फौरी बाद
हाँ,
जब वो नीले जे का टाइम आ जाएगा फिर नीले जे आएंगे, आएंगे अकेले होंगे।
अच्छा ये ऐसा ना हो पीले जे हो जाए नींद को मार मार के लोग लाल नीला पीला काला कर दें। अच्छा जी, अच्छा जी, आज बढ़ती अफसोस की एक खबर है क्रिकेट की दुनिया से, वेस्ट इंडियन सुपरस्टार जो है ये कैरन पोलार्ड, 33 सिर्फ ईयर्स इनकी एज है, लेकिन आज इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को खुदा हाफिज कह दिया है। इन्होंने कहा जी 15 साल मैंने बड़ा राज किया, बड़ा खुशी मुझे हुई, मैंने अपनी ड्रीम्स जो थी मेरी जिंदगी की और मैंने अपना जो वेस्ट इंडीज के जो कलर्स थे उनको सारी दुनिया में जो है मैं लेके जाता था, तो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट, लेकिन अब मैं जो है इंटरनेशनल क्रिकेट को खुदा हाफिज बोल रहा हूं। तो जाहिर है कि फैंस वगैरह जो हैं वो बड़ा इनको प्यार करते थे उन्हें, तो ये आजकल जो है मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में खेल रहे हैं, मगर वो कहते हैं दैट्स अबाउट इट और नहीं मुझे आगे जाना। और जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, अफसोस की न्यूज है, बेचारी हमारा जो ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर है आमिर खान, आमिर खान और उसकी जो बीवी है फरियाल मखदूम, ये बेचारे जो थे लंदन, ईस्ट लंदन के एरिया में थे, लेटन के एरिया में, तो वहां पे गन पॉइंट पे इसको जो है आमिर खान को लूट लिया गया है। वो कहता है जी अल्लाह का शुक्र है मेरी बीवी जो थी वो कुछ कदम मेरे से पीछे थी, हम वहां पे बाहर निकले हुए थे तो दो लड़के आए हैं, उन्होंने गन जो है मेरी कनपट्टी पे रखी है और उन्होंने कहा है वो मेरी वॉच थी बड़ी एक्सपेंसिव, मुझे कहा है उतार के मुझे ये दो, तो वो लेके
वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर,
यस पाकिस्तानी बॉक्सर,
मेरा ख्याल उनको पता नहीं था
आमिर खान, उनको पता नहीं था, हाँ हाँ, और ये इंग्लैंड में जैसी जगह पे लंदन में ये हुआ, ठीक है जी,
अगर ये एक पंच मारता गन रह जाती,
हाँ गन शन सब कुछ उधर ही रह जाना था। बहरल जी इसने गन शन दे दी क्योंकि शायद बेचारी पीवी पीछे थी तो उसको डर लगा होगा कहीं उसको ना गोली गोली मार दें। बहरल मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है उसने कहा जी कि क्राइम्स जो है बेतहाशा इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड है कितना टिड्डी जितना मुल्क है, तो ये जरा क्राइम रेट आप देखें, वो कहते हैं जी बेतहाशा मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच में कैन यू इमेजिन 897 से ज्यादा क्राइम्स हुए हैं और इसमें से जो थे 217 जो थे वो सिर्फ थेफ्ट्स थे। और फिर ये बातें बनाते हैं सऊदी को, सऊदी जैसे बड़े मुल्क में शायद पूरे साल में 100 क्राइम्स होते हैं, 100 बिकॉज ऑफ देयर लॉज, जिसको कि ये कहते हैं बड़े ड्रेकोनियन लॉज हैं और तुम लोग बड़े जो है इन ह्यूमन और ये वो, तो आप जो बड़े ह्यूमन हैं तो आप ये देख लें आपके साथ आपका एक वर्ल्ड क्लास चैंपियन एक आदमी है उसको भी लूट के ले गए अगले हैं जी। तो ये थी जनाब हमारी आज की सारी खबरें,
ये थी आज की खबरें। और सब आज अफ्तार का टाइम आपका है 8:09 पे और कल सहरी आपने खत्म करनी है 4:58 पे। शादी जी थैंक यू सो मच,
और
इंशाल्लाह ताला, एंड अब विदाउट एनी डिले मैं आपको ले चलता हूं इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो की जानिब, जीशान जो प्रोग्राम तैयार करते हैं आपके लिए अफतारी का खासुल खास प्रोग्राम, 6:30 से 7 बजे तक इस्लामिक फाउंडेशन का प्रोग्राम है, 7:30 से 7:30 तक डॉक्टर फरहत हाशमी हमारे साथ होंगे और 8:15 तक हमारे साथ होंगे आप। चलिए साहब प्रोग्राम इन प्रोग्रेस, लेट्स गो देयर।
पड़ा हूं तेरे दर पे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा, दिल बदल दे तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा, दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा, दिल बदल दे दिले मगमूम को मसरूर कर दे, दिले मगमूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे, मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.
آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو ساز آواز 770 AM پر. ہمارے لائیو 24 گھنٹے کی نشریات کو دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com. ڈاؤن لوڈ کیجیے ہماری فری ای آواز آفیشیل ایپ اینڈرائڈ اور ایپل پر. ہماری نشریات کو اپنے لوکل فون پر سننے کے لیے ڈائل کیجیے 6478724900. آئیے اب سنتے ہیں رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام. اس کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے اسلامک فاؤنڈیشن آف ٹورنٹو نے. اس پروگرام کو آپ ریڈیو کے علاوہ ہمارے چینل ای آواز ٹی وی اور فیس بک ای آواز پر لائیو دیکھ سکتے ہیں.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my beloved viewers out there. On behalf of IFT, we're coming to you with this segment and with this beautiful program right now in the beautiful month of Ramadan, when at least maybe about half of Ramadan has already lapsed. So we need to use our time in a very, very constructive manner. But before we get into our discussion, our topic of discussion, it's imperative and important that we recite from the Quran. Why? Because this is the month of the Quran. May Allah Ta'ala Azza wa Jal grant us understanding.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
My beloved brothers, my beloved sisters, dear viewers out there, subhanAllah, we find ourselves in this beautiful month of Ramadan 1443, corresponding to April 2022. For those of us that have experienced this beautiful month of Ramadan, we are blessed. Truly speaking, we are blessed. This is a month of barakah, a month of blessings. It is a month of spiritual rejuvenation and comes with a basket of opportunities. Opportunities wherein we can introspect, reflect, ponder, and make sincere resolutions to turn our lives around for the better. It is only a fool will experience the month of Ramadan and not take the blessings and the benefit from this month of Ramadan. Hence, myself and yourself, it's still not too late. There are still about half of the month of Ramadan still left. And we can still take complete advantage, benefit, barakah and goodness, positivity from this beautiful month of Ramadan. Alhamdulillah, I am here in South Africa. My name is Qari Ziyad Patel, and I want to express my profound gratitude and thanks to IFT, Islamic Foundation of Toronto, for allowing me this opportunity to engage with each and every one of you. And subhanAllah, IFT is doing some fantastic work, which is a benefit to the community and to the Ummah at large. May Allah Azza wa Jal take them from barakah, from strength to strength, and may he continue to accept the fantastic endeavors across the spectrum. Ameen. Dear brothers, this legacy of Ramadan, we need to ask ourselves the rhetorical question, how are we going to carry the legacy of Ramadan beyond the month of Ramadan? And this is up to me and to you to understand and to decipher and to plot and plan. So there has to be something concrete that we extract from this month of Ramadan and we carry it over, not only into the month of Shawwal or Dhul-Qadah, Dhul-Hujjah, but for the balance of our lives, for the remainder of our lives. Why? Because life has become too short. Who knows, we may not experience another month of Ramadan. Therefore, we need to take the barakah, the blessings and the goodness of this Ramadan and carry it over, not only for a short moment of time, but forever in our lifestyle. Perhaps there's these two points that I'd like to extract for me and for you, that perhaps we should, and it is a must, for us to continue with this legacy beyond Ramadan. Firstly, our salah. Very, 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 very important. Alhamdulillah, I'm rest assured that many, many of us will be performing our five times salah on time in Jamaat. So this is the legacy that we need to continue with. It is of imperative importance. Life is short. Time is short on earth. Trust me, the COVID-19 era has taught us, the COVID-19 pandemic has taught us how short life has become. So my beloved brothers, my beloved sisters, we have to take something concrete, something significant from this beautiful month of Ramadan. And perhaps I would say there are two things we ought to take with us beyond Ramadan and into our lifestyles. Number one, our salah, our prayer. The first thing that we will be questioned after our iman on the day of Qiyamah, on the day of judgment, is our prayer, our salah. And yes, I'm rest assured that many of us are already performing all of our salah in this beautiful month of Ramadan. And amongst that, I'm rest assured many of us are performing our salah on time in Jamaat in this month of Ramadan. All I am saying is let's continue this legacy. Alhamdulillah, we are also performing tahajjud, we are also performing qiyam al-layl, we are also performing salat al-taraweeh. Let us continue the legacy and the goodness of our salah beyond Ramadan, not only for the month of Shawwal, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hujjah, but into our lifestyle till the day we leave this dunya. The second point I want to make, and perhaps the second extraction we take from this beautiful month of Ramadan, is our connection, our personal relationship with the Holy Quran Kareem. Once again, I'm rest assured, and I have a good thought of every one of you out there, that we are reciting the Quran. We are engaging with the Quran in this beautiful month of Ramadan. Why? Because it is the month of the Quran. It is the month of the Quran. For the words of the ayat I've recited before you, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. It is the month of Ramadan that the Quran was revealed as a criterion and a guidance to mankind. So all I'm saying, beyond Ramadan, let us continue this legacy with the Quran. Let us continue our relationship with the Quran. So these are the two points I'm asking of every one of us to extract and take with us from this beautiful month of Ramadan. If we can just perhaps preserve these two aspects into our lives, inculcate these two ibadah into our lives, inculcate these two responsibilities into our lives beyond Ramadan, then this would have been a very, very successful and accepted Ramadan for me and for you. Beloved brothers, beloved sisters, time is ticking, time is lapsing at a very quick and rapid state. Let us spend our time in a very constructive manner. We approximately have about the last 10 days of Ramadan. You know? Time is very, 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 very short. Look at how quick the time has lapsed in this month of Ramadan. Hence, all I'm saying to you, and I'm appealing to you, every one of you out there, let us use these last few moments of Ramadan in a very constructive manner, in a manner that will be beneficial to me and to you and to every one of us. And remember, let us take at least these two qualities or these two aspects or these two responsibilities for the holy month of Ramadan, and that is the Quran and our Salah. May Allah Ta'ala Azawajal accept from us. Ameen. We say to every one of you, taqabbal Allah minna. صيامكم وصلاتنا وركوعنا وسجودنا. May Allah Azza wa Jalla accept our fasting. May He accept our salah. May He accept our ruku. May He accept our prostration. May He accept our prayers, etc. Beloved brothers, Alhamdulillah, you know, time has lapsed so quickly in my address and my talk to every one of you. But it is also the month of giving. Ramadan is the month of charity, it is the month of giving. I said to you in my opening statement, it is a month, it comes with a basket of opportunities. It is undoubtedly a month of opportunity. And one of the things we can, ought to do, and we should be doing, and we can do in this month of Ramadan, is support the noble causes around us. And Alhamdulillah, IFT is doing some brilliant, sterling work. And it is our local organization, so let's support it. And I'm asking you to make a humble, I'm making a humble appeal to every one of you. And I'm asking you to call IFT today, Islamic Foundation of Toronto. Call them, support them financially or otherwise, or in whichever other way. Call this number, 416-321-0909. Call up that number, engage with our brothers at IFT, and let's become part of this beautiful initiative. If you want to send him an email, you're more than welcome to send him an email at info@islamicfoundation.ca. Or check out the website, www.islamicfoundation.ca. May Allah Azza wa Jalla bless each and every one of us. And once again, alhamdulillah, we are honored and privileged to be in this beautiful month of Ramadan. It comes with a basket of opportunities. We just need to grab onto these opportunities and make the best of it and take the blessings of the Ramadan for the whole of Ramadan. It is an opportunity for me and for you. You know, life has become very short. We may not see another Ramadan. So let's make the best of this Ramadan, especially the last few moments of this month of Ramadan. Beloved brothers, beloved sisters, support Islamic Foundation of Toronto. More information at www.islamicfoundation.ca. And I pray to Allah Azza wa Jalla that He brings me to Canada very, very, very soon so I can see all your beautiful souls and engage with all of you and be with all of you. And in this way, this is how we build a strong ummah. We put our hands together and then we will make a short dua, inshallah. اللهم يا حنان يا منان يا قوي يا عزيز يا ذو الجلال والإكرام سبحان الله سبحان الله ولحمده سبحان الله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك الواحد اللحن الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا غفار يا قهار يا قوي يا عزيز اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم عد علينا رمضان أعواما عديدا وعزلة مديدا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولوالدي ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام يا حنان يا منان اغفر لنا يا حنان أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على الإيمان وامتنا عن الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. يا رب صلي وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Beloved viewers, as I've mentioned, this is the month of giving. This is the month of goodness. Let us open up our hearts and let us donate towards these worthy causes. And Alhamdulillah, Islamic Foundation of Toronto is doing some sterling work, some sterling initiatives, and you ought to support them and ought to help them. So pick up the phone and make that call today and speak to one of our brothers to see how you can donate, how you can assist, how you can help, how you can volunteer. So it's 416-321-0909. That's the number again, 416-321-0909. You can get more information at www.islamicfoundation.ca. Alhamdulillah, this is an organization, a foundation, which is helping the Ummah, serving the Ummah. We ought to be part of this noble initiative and this noble endeavor. Make that call today, 416-321-0909. Let's support them, let's help them, let's assist them. Let's donate in this month of Ramadan, in the month of giving, in the month of charity, in the month of goodness. Now is the time. Make that move. Make that call. More information at www.islamicfoundation.ca. Barakallahu feek.
Allahu Allah, 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 Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu was-salamu ala rasulihi al-kareem. Muhammadin wa alihi wa sahabihi ajma'in. Bi rahmatika ya rahman ar-Rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Ramadan ke shuru se ibtida jaisi hoti hai. مسجدوں میں اور وائزوں کی لبوں پر یہ سب سے پہلے یہ حدیث آتی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قید کرنے سے کیا مراد ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن پھر بھی بہت ایسے اکثر تعداد نظر آتی مسلمانوں کی جو نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو قید پھر شیطان قید ہوا تو پھر کسی کو بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تو آئیے اس حدیث کی روشنی میں دیکھتے اس کا مفہوم کیا ہے, قید کرنے سے کیا مراد ہے. پہلے حدیث مفہوم سنیے. متن بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے. یہی بات ترمذی اور ابن ماجہ میں اس طرح آئی ہے کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور آگ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, بس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا, اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, بس اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا, اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کو چاہنے والے آ گیا اور اے شر کو چاہنے والے رک جا, اور اللہ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے, اور ایسا ہی ہر رات ہوتا ہے. شیطان کا باندھا جانا فرد کی نسبت سے ہے نہ کہ عمومی طور پر تمام لوگوں کی نسبت سے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کے تمام شیطان ایک مہینے کے لیے مکمل طور پر باندھ دیے جائیں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین اس فرد کی نسبت سے بن جاتے ہیں جو صحیح معنوں میں روزہ دار ہوتا ہے, جو تمام آداب و شرائط کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں ایسے روزے دار شخص کے اوپر شیطان غیر مؤثر ہو جاتا ہے, یعنی شیطان کا قید ہو جانا یا مقید ہو جانے سے مراد کوئی یعنی ایک عام جنرلائزیشن نہیں ہے, ہر ایک کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے اپلیکیبل ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ اسی اہتمام سے کرتے ہیں, جو آداب و شرائط ہیں اس کے روزہ رہنے کے اس پر جو پورے اترتے ہیں ان کے لیے شیطان قید کر دیا جاتا. اس حدیث میں بظاہر صوم سے مراد روزہ کی بات ہے کہی گئی ہے, مگر دراصل وہ صائم کی بات ہے, روزے دار کی بات ہے. اس میں اس انسان کا ذکر ہے جو روزے سے یہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے, جو حدیث کے الفاظ میں وہ روزے کو اپنے لیے ڈھال بنا لیتا ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ایک بندہ مومن اللہ کی خاطر اس کے روزے رکھتا ہے تو اس کو تقوی کا تجربہ ہوتا ہے. اس عمل کے دوران اس کے اندر اعلیٰ قسم کی ربانی کیفیت ابھرتی ہے. ربانی ایک کیفیت سے مراد کانشیسنس آف اللہ, ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی وجود کا, موجودیت کا, جو آدمی کو ان فائدوں کا مستحق بنا دیتی ہے جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. تب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا جب روزہ رکھتا ہے انسان تو اس کو تقوی کا تجربہ ہوتا ہے. کہہ رہا تو یہ تقوی ہے کیا چیز؟ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ تقوی کو کس طرح ڈیفائن کریں گے, کس طرح بیان کریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سمجھو کہ تم ایک پتلے سے راستے پر چل رہے ہو, ایک تنگ راستے پر چل رہے ہو, اور راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں, تو تم کس طرح چلو گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی تم پہلے سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو لپیٹو گے تاکہ وہ خاردار جھاڑیوں میں نہ الجھے, اور پھر بچ بچ کے چلو گے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل قدر صحابی ہیں, جو کاتبان وحی میں جن کا شمار ہوتا ہے, انہوں نے تقوی کا معنی یہ بیان کیے ہیں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت, یعنی امید اس پہ اللہ کی رحمت پر کہ اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی, اور خوف اس بات کا کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا. تو اس کو تقوی کہتے ہیں. تو تقوی دینی حساسیت کا دوسرا نام ایک سنسیٹیویٹی جو کہتے ہیں, ریلیجس سنسیٹیویٹی, اسپرچل سنسیٹیویٹی اس کا دوسرا نام. اس اعتبار سے روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک دینی احساس کو بیدار کیا جائے, اس کو بے حس انسان کے بجائے ایک حساس انسان بنا دیا جائے. ہر آدمی کی فطرت میں ایک ربانی انسان موجود ہوتا ہے. روزہ اس لیے ہے کہ وہ آدمی کے اندر چھپے ہوئے اس ربانی انسان کو جگا دے. رمضان کا مہینہ ہر سال اس لیے آتا ہے کہ آدمی کو روزے کے تجربات سے گزار کر اس کے اندر تعلق باللہ کی کیفیت کو زندہ کیا جائے. یہاں تک کہ کوئی بندہ مومن اپنے رب کو یاد کر کے کہہ اٹھے کہ خدایا تو شیطان کو اس سے روک دے کہ وہ مجھے گمراہ کرے, خدایا تو میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے اور اس کا کوئی دروازہ میرے اوپر بند نہ رکھ, اور تو میرے اوپر جہنم کے دروازے بند کر دے اور اس کا کوئی دروازہ میرے لیے کھلا نہ رکھ. جس شخص کا روزہ اس کے لیے اس پکار میں ڈھل جائے وہی وہ شخص ہے جس کے حق میں مذکورہ حدیث کے الفاظ پورے ہوں گے. روزہ گویا ایک سالانہ موقع ہے جبکہ آدمی شیطان کو باندھ کر اس کو اپنے اندر سے دور کر دیتا, اپنے سے دور کر دیتا ہے. حدیث میں بظاہری الفاظ ہیں کہ روزے کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کا روزہ اس کے اندر یہ تڑپ پیدا کر دے کہ خدا سے اس بات کا طالب بن جائے کہ شیطان کو اس کے اوپر اثر انداز ہونے سے روک دیا جائے, تو خدا اس کو وہی چیز دیتا ہے جس کی طلب اس کی نفسیات میں ابھرتی تھی. اس طرح حدیث میں بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ روزے کے مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا روزہ اس کے اندر یہ احساس بیدار کر دے کہ وہ پکار اٹھے کہ خدایا تو میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو میرے اوپر بند کر دے, اور تو اس کے لیے خدا اس کا فیصلہ دے دیتا ہے جو اس نے خدا سے اپنے لیے مانگا تھا. ہر عمل آدمی کو کسی انعام کا مستحق بناتا ہے, اور روزے کا عمل آدمی کو اس بات کا مستحق بناتا ہے کہ اللہ اس پر اپنا خصوصی انعام فرمائے, اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنی ابدی رحمتوں کے سائے میں لے لے. الحمدللہ ہم رمضان کے تیسرے عشرے سے گزر رہے ہیں, اور اس عشرے میں خصوصی طور پر ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہماری نافرمانیوں اور جتنی بھی ہم سے گستاخیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو بخش دے, اس کو اس سے درگزر فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم تمام امت کے لیے دعا کریں, اور بالخصوص یہ جو وبا کا اس وقت جو دور دورہ ہے اس پر زور ہے, اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد دنیا سے اٹھا لے خیر و عافیت کے ساتھ, اور مزید کسی نقصان کے ساتھ